समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
सुप्रभात, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आप सभी सुनने वालों का आकाशवाणी के गोल्ड चैनल पर कार्यक्रम आज सवेरे में। इस कार्यक्रम में हम लाएंगे आप तक देश दुनिया के समाचार और वो सभी जानकारी जिसका आपसे है सरोकार। आज सवेरे के इस अंक के साथ मैं हूं विशाल शर्मा और मेरे साथ हैं सुभद्रा रामचंद्रन। गुड मॉर्निंग सुभद्रा।
Hello there, Vishal. Good morning to you, and hey there, listeners. Happy Sunday to you all. We are here with a brand new session of our news magazine program, Aaj Savere. So, Vishal, without wasting any time, let's begin with some news headlines. So, I'm starting with the news headlines today. Prime Minister Narendra Modi asserted that India will continue to develop at a faster pace, even though the entire world is caught in a whirlpool of uncertainty. Speaking at the India Today conclave in Delhi yesterday, Mr. Modi highlighted that the mood of the nation is to make India the world's third largest economy. He also said that he does not work on delivering headlines, but deadlines. Prime Minister noted that during the pre-2014 period, there were only a few hundred registered startups, whereas this number stands at around 1.25 lakh today. He emphasized that the real identity of India's startup revolution is that these startups are spread in more than 600 districts of the country, which is the 90% of the area of the country. He said the youth of Tier 2 and Tier 3 cities are leading the startup revolution, and the grand success of young people belonging to small cities is driving up the startup revolution of Bharat. Mr. Modi pointed out that village women who would never have ever ridden a bicycle are now becoming drone pilots. The Prime Minister remarked that this will have a multiplier effect in the growth of the society.
आगामी लोकसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। चुनाव 7 चरणों में कराए जाएंगे। मतगणना 4 जून को होगी। पहले चरण में अगले महीने की 19 तारीख को लोकसभा की 102 सीटों पर मतदान होगा। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 89 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। तीसरा चरण 7 मई को होगा, जिसमें 94 सीटों पर मतदान होगा। चौथे चरण में 13 मई को 96 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पांचवें चरण में 20 मई को 49 संसदीय सीटों पर मतदान होगा, जबकि छठे चरण में 25 मई को 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण में 1 जून को 57 संसदीय सीटों पर मतदान होगा। निर्वाचन आयोग ने ओडिशा, आंध्र प्रदेश और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की भी घोषणा कर दी है। 32 सदस्यों वाली सिक्किम विधानसभा और 60 सदस्यों की अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के लिए लोकसभा चुनावों के साथ 19 अप्रैल को एक चरण में मतदान होगा। 175 सदस्यों की आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 13 मई को एक ही चरण में वोट डाले जाएंगे। 147 सदस्यों वाली ओडिशा विधानसभा चुनाव के लिए 13, 20 और 25 मई और 1 जून को 4 चरणों में मतदान होगा। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही चुनाव आचार आदर्श संहिता लागू हो गई है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए 2100 प्रेक्षक तैनात किए जाएंगे। मौजूदा लोकसभा का कार्यकाल इस वर्ष 16 जून को समाप्त हो रहा है।
Indian Navy has successfully rescued 17 crew members of a hijacked cargo vessel MV Ruin and captured all 35 pirates from it. Indian Navy said INS Kolkata intercepted the under-attack pirate ship, which was sailing almost 2,600 kilometers from Indian shores, and forced it to stop through calibrated actions. The operation, which lasted for the last 40 hours, was supported by the Indian warship INS Subhadra, high-altitude long-endurance drones, P-8I maritime patrol aircraft, and Marcos Prahars. Later, the vessel was also sanitized for the presence of illegal arms, ammunition, and contraband. The Maltese-flagged vessel was hijacked in December last year near the Yemeni island of Socotra. According to the European Union Naval Force, there are suspicions that the vessel may have served as a base for the takeover of Bangladesh-flagged cargo ship off the coast of Somalia earlier this week. for over a decade. Somali pirates have been a source of turmoil in important global waterways. Since 1st of December, at least 17 incidents of hijacking, attempted hijacking, and suspicious approaches have been recorded by the Indian Navy.
दिल्ली की एक अदालत ने भारत राष्ट्र समिति बीआरएस की नेता के कविता को दिल्ली आबकारी नीति मामले में 23 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया है। निदेशालय ने सुश्री कविता को शुक्रवार को गिरफ्तार किया था। प्रवर्तन निदेशालय ने कविता के लिए 10 दिन की रिमांड मांगी थी। उन पर दिल्ली आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साजिश रचने का आरोप है।
CBI arrested the brother of Sheikh Shah Jahan and two others after a marathon 9 hours interrogation at Nizam Palace office in Kolkata. Sheikh Alamgir, the brother of Shah Jahan, and others were arrested on charges of attack on EDT on 5th January in Sandesh Khali. They were taken to hospital for medical checkup. Another team of CBI has gone to Sarbiria of Sandesh Khali to interrogate acquaintances of Sheikh Shah Jahan.
आज देश के 23 राज्यों में आधारभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान आकलन परीक्षा आयोजित की जा रही है। इसका आयोजन नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत किया जा रहा है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि सभी 23 राज्यों के प्रत्येक जिले में आयोजित की जा रही इस परीक्षा में करीब 37 लाख परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। परीक्षा में 3 विषय शामिल होंगे, पाठन, लेखन और संख्या ज्ञान। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप ये परीक्षा क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित की जा रही है।
Going over to some sports news, the Women's Premier League WPL cricket, Royal Challengers Bangalore will play against Delhi Capitals in the final at Arun Jaitley Stadium in New Delhi today. Smriti Mandhana-led RCB defeated defending champions Mumbai Indians by 5 runs in the eliminator on Friday. Meg Lanning-led Delhi Capitals have won 6 of the 8 games in the tournament. While Royal Challengers could win only 4 games, Women's Premier League 2024 final will begin at 7:30 p.m. IST.
ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल सेमीफाइनल में कल भारत के लक्ष्य सेन को इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी से 12-21, 21-10, 15-21 से हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले इंडोनेशिया के शटलर एंथनी गिटिंग ने कल बर्मिंघम में फाइनल में प्रवेश कर लिया। पांचवीं वरीयता प्राप्त गिटिंग ने फ्रांस के क्रिस्टो पोपोव को हराया। गिटिंग का आज होने वाले फाइनल में जोनाथन क्रिस्टी से मुकाबला होगा। और अब हमारा समय है क्षेत्रीय समाचारों का। और सबसे पहले मेट्रो न्यूज की अगर हम बात करें तो चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद से क्या समाचार है आपके पास सुभद्रा?
यस विशाल, वी आर स्टार्टिंग विद न्यूज फ्रॉम चेन्नई। द टर्टल नेस्टिंग सीजन यूजुअली बिगिन्स फ्रॉम दिसंबर एंड एंड्स इन मार्च। अ राइजिंग नंबर ऑफ ऑलिव रिडले टर्टल बॉडीज वॉशिंग अशोर ड्यूरिंग द नेस्टिंग सीजन हैज स्कार्ड द कोस्ट ऑफ चेन्नई, अपसेटिंग कंजर्वेशनिस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफिशियल्स। At least 200 of the carcasses have washed up on the stretch from Napier Bridge to Kovalam. The reason for that is said to be the use of some nets which are used by trawlers and gill net bolts. Sighting of turtle nests and collection of eggs along the city coast was delayed this season. Since the beginning of this month, 40 nests and 4,100 eggs have been identified and collected. The Lok Sabha elections would take place in Tamil Nadu in one phase on April 19 and that the results would be counted on June 4th. The election date has been announced and with it, the model code of behaviour. The district police officials have also issued instructions to watch out for violations of the code. Going over to Bengaluru now, Karnataka Chief Electoral Officer Manoj Kumar Meena has informed that the state has made all preliminary arrangements for the Lok Sabha polls. Addressing media persons in Bengaluru yesterday, he said the state will have its elections in two phases on April 26 and May 7. Rolling out latest poll-related statistics, he said that as on date, there are 5,42,08,088 voters enrolled in the electoral roll, which is 1,14,582 more than the one published in January of 2019. Mr. Meena informed that all the 58,834 polling stations across the state have ramps for the physically challenged voters, drinking water, electricity, furniture, waiting room, signages and separate toilets for male and female voters. The number of model polling booths are 1,808, out of which 1,120 will be pink booths, managed entirely by women staff and men for women voters. 224 booths will be managed by people with disability, another 224 by youth. There will be 200 polling booths based on different themes and 40 will be ethnic polling stations in tribal areas. Bangalore North Parliamentary Constituency will have the highest number of 2,911 polling booths as it has the highest number of electorate in the state. Udupi Chikmagalur Parliamentary seat will have the minimum 1,842 polling booths as it is also the seat with minimum number of voters. Total number of polling personnel to be deployed for election duty will be 2,79,752 and the Election Commission has at its disposal a total of 3,51,153 personnel. Check posts are opened at different locations, out of which 172 will be manned by police personnel, 40 by the Excise Department. There will also be 19 forest check posts. Hyderabad News Now. Hyderabad District Election Officer Ronald Rose has said the citizens can enroll for voter ID registration and residence shifting or correction till 10 days before the last day of nomination, that is till April 14. Even after the last date, people can apply, but they will not be added to the 2024 Lok Sabha election voters list and in the voters list. There are 3,986 polling stations and 1,675 polling locations in the three police commissionerates in Hyderabad and Secunderabad constituencies. There are over 45.70 lakh voters in Hyderabad district as per the election final roll of February this year. Of them, 23.30 lakh are male voters and 22.39 lakh are female voters. 324 third gender voters are also listed in the electoral rolls. And Vishal, over to you now for rest of the news.
सुभद्रा, सबसे पहले दिल्ली के समाचारों की बात करें तो सौर ऊर्जा से जुड़ी एक बड़ी खबर हमारे पास है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली सोलर पॉलिसी 2023 लागू कर दी है। दिल्ली की ऊर्जा मंत्री आतिशी ने बताया कि इस पॉलिसी से न सिर्फ दिल्ली वालों का बिजली का बिल जीरो होगा बल्कि प्रदूषण को भी कम करने में मदद मिलेगी। इस पॉलिसी के तहत हर यूनिट बिजली उत्पादन करने पर दिल्ली सरकार रूफटॉप सोलर लगवाने वाले उपभोक्ताओं को पैसे देगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य है कि 2027 तक दिल्ली में इस्तेमाल होने वाली कुल बिजली में 50% बिजली सोलर एनर्जी से हो। आतिशी ने बताया कि दिल्ली सोलर पॉलिसी का फायदा आवासीय सेक्टर के अलावा कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल उपभोक्ताओं को भी मिलेगा। दिल्ली में जहां झुग्गी वहीं मकान योजना के अंतर्गत उत्तरी दिल्ली के अशोक विहार में कुल 1,675 फ्लैट में से 1,396 निवासियों को फ्लैट आवंटित कर दिए गए हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया कि पात्र झुग्गी झोपड़ी निवासियों को 25 लाख रुपए प्रति फ्लैट की निर्माण लागत के स्थान पर लाभार्थी योगदान के रूप में 1,41,000 रुपए पर आवंटन किया जा रहा है। इन फ्लैटों में सभी आधुनिक सुविधाएं, भौतिक बुनियादी ढांचा, सामुदायिक सुविधाएं, सीवरेज शोधन, साफ और स्वच्छ पेयजल की सुविधाएं प्रदान की गई हैं। दिल्ली नगर निगम सभी रेहड़ी पटरी वालों का सर्वे कराएगा और दुकान लगाने के लिए उन्हें जगह भी देगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि सर्वे के बाद रेहड़ी पटरी वाले बिना परेशानी के अपनी दुकान लगा सकेंगे। उन्होंने कहा कि इस सर्वे में कुछ महीने का समय लगेगा। दिल्ली सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी ताकि आसपास के दुकान वालों को कोई परेशानी न हो। और अब रुख करते हैं मुंबई का। महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस ने कहा है कि आजादी के बाद के समय में आईआईटी ने देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है। कल राजभवन मुंबई में आयोजित अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों आईआईटी के रजिस्ट्रारों के दो दिवसीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। श्री बैंस ने कहा कि देश के उच्च शिक्षा संस्थानों और विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में कुछ आईआईटी हमेशा उच्च स्थान पर रहते हैं। राज्यपाल ने सुझाव दिया कि सभी आईआईटी संस्थानों को विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए प्रशासन को परिष्कृत और छात्र अनुकूल बनाना चाहिए, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रों के प्रति अधिक संवेदनशील होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि आईआईटी संस्थानों में महिलाओं का अनुपात लगभग 20% है, जो अपेक्षाकृत कम है, और संस्थान में महिला छात्रों की संख्या बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए। बृहन मुंबई नगर निगम ने मुंबई का 3D डिजिटल मॉडल बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इससे नगर निकाय को शहर की योजना बनाने और आपदा प्रबंधन के साथ साथ अतिक्रमण पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। 3D सिटी मॉडल प्रोजेक्ट के कार्य का उद्घाटन हाल ही में बांद्रा कोरला सेंटर में अतिरिक्त नगर आयुक्त अश्विनी भिड़े ने किया। 3D मॉडल के लिए पायलट प्रोजेक्ट 2021 में वर्ली क्षेत्र में आयोजित किया गया था। मेट्रो न्यूज के बाद अब नजर डाल लेते हैं मौसम पर। और दिल्ली के मौसम की बात करें सुभद्रा, तो आज आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। हालांकि तापमान अब धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया है राजधानी का। कल का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मुंबई में आंशिक रूप से आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। कोलकाता में सुबह के समय आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, शाम के समय आंधी या ओलावृष्टि के साथ बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है।
And Chennai is expected to have partly cloudy sky. The minimum temperature was 27 degrees Celsius. Maximum will be around 34. Bengaluru is expected to have partly cloudy sky. Minimum temperature was 24 degrees Celsius. Maximum will be around 34 degrees. Hyderabad is expected to have cloudy sky with light rain and drizzle. The temperature will hover between a minimum of 22 degrees and a maximum of 35 degrees Celsius.
मौसम के बाद अब डाल लेते हैं नजर इतिहास के पन्नों पर और जानने की कोशिश करते हैं कि आज के दिन यानी 17 मार्च के दिन इतिहास में कौन सी प्रमुख घटनाएं घटी जिन्होंने एक अपनी छाप भी छोड़ी। आज ही के दिन 1845 में लंदन के स्टीफन पेरी ने रबर बैंड का पेटेंट कराया था।
Boy, that's a great news,
और
right?
कितने इस्तेमाल की चीज है हमारे बहुत दैनिक जीवन में जो है
exactly.
बहुत ही उपयोग की चीज है।
एवरी डे वी आर यूजिंग दिस राइट। इन 1762 द फर्स्ट सेंट पैट्रिक्स डे परेड वॉज हेल्ड इन न्यूयॉर्क सिटी। द सेलिब्रेशन स्टिल हैपन्स टुडे विद अराउंड 2 मिलियन स्पेक्टेटर्स। And in 1776, British forces evacuated Boston to Nova Scotia during the Revolutionary War. And in 1824, a trade agreement was signed between Britain and Netherlands.
और 1942 में आज के दिन अमेरिका में दुनिया में कला के बेहतरीन संग्रहालयों में से एक नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट की शुरुआत की गई थी। और 1959 में बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा आज के दिन तिब्बत से भारत पहुंचे थे।
In 1861, Italy was unified into a single kingdom under Victor Emmanuel II. And in 1871, the National Association of Professional Baseball Players was organized. In 1905, Albert Einstein finished his scientific paper detailing his quantum theory of light. And of course, this theory would become a cornerstone of modern physics.
और IBM एक जानी मानी कंपनी कंप्यूटर के क्षेत्र में और 1987 में आज ही के दिन IBM ने पर्सनल कंप्यूटर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम 3.3 वर्जन जो है जारी किया था।
1973 लंदन ब्रिज डिजाइन बाय लॉर्ड हालफर्ड वाज ऑफिशियली ओपन बाय क्वीन एलिजाबेथ II। एंड इन 1992 अपार्टाइड इन साउथ अफ्रीका केम टू एन एंड विद द एबॉलिशमेंट ऑफ रेशियल सेग्रीगेशन इन द कंट्री।
और नेल्सन मंडेला ने इस रंगभेद के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी थी और बहुत संघर्ष किया और 27 साल तक वो जेल में भी रहे। तो ये तो हुई।
वन मोर, आई हैव फ्यू मोर
जी।
1994 रशिया डिसाइडेड टू जॉइन नेटो पीस कोऑपरेशन प्लान। इन 2003 क्लिफ द म्यूजिकल ओपन्स एट द प्रिंसेस ऑफ वेल्स थिएटर इन लंदन। द शो विच इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ क्लिफ रिचर्ड क्लोजेस 3 मंथ्स लेटर ऑन।
तो ये तो हुई इतिहास की बातें और इतिहास में आज के दिन क्या क्या प्रमुख घटनाएं घटी इसके बारे में हमने आपको बताया। और अब बात करते हैं उन व्यक्तित्वों के बारे में, उन पर्सनालिटीज के बारे में जिनका आज ही के दिन जन्म हुआ या आज ही जिनकी मृत्यु हुई, आज जिनकी आज पुण्यतिथि है। और सबसे पहला नाम हमारे सामने है कल्पना चावला का। आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था 17 मार्च 1962 में।
Yes, we remember aerospace engineer Kalpana Chawla, Indo-American astronaut, and the first Indian woman went into space. She was born in Karnal, was fascinated by flight since her childhood. She earned a bachelor's degree in aeronautical engineering from Punjab Engineering College, followed by a master's degree in aerospace engineering from the University of Texas, Arlington, and later a PhD on the same subject. Chawla held numerous pilot licenses, including for airplanes, gliders, and seaplanes.
और 1988 में कोलोराडो विश्वविद्यालय से इन्होंने डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री हासिल की थी और इसी वर्ष कल्पना ने नासा के एम्स रिसर्च सेंटर में काम करना शुरू किया था। कल्पना की पहली अंतरिक्ष उड़ान STS-87 कोलंबिया स्पेस शटल से संपन्न हुई और ये 19 नवंबर से 5 दिसंबर 1997 तक स्पेस शटल में रही।
एंड शी वाज अ मिशन स्पेशलिस्ट। ऑन जनवरी 16, 2003 Chawla launched on board Space Shuttle Columbia. Unfortunately, friends, Chawla and the other 6 crew members were tragically killed when Space Shuttle Columbia broke apart during the re-entry on February 1, 2003. And you are listening to Contact Lost. That's an instrumental requiem for the Space Shuttle Columbia astronauts, penned by the guitarist of the British rock band Deep Purple, Steve Morse, soon after the tragedy.
और प्रसिद्ध असमिया साहित्यकार निरुपमा बोरगोहाइन का आज ही के दिन जन्म हुआ था 1932 में। सन 1996 में चर्चित उपन्यास अभिजात्री के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। निरुपमा बोरगोहाइन ने रामधेनु पत्रिका में एक छद्म नाम नीलिमा देवी के से लघु कथाएं अपनी प्रकाशित करना शुरू किया था। इनकी कुछ रचनाओं में हम बात करें तो अनेक आकाश, जलाचाबी, शून्यतर काव्य मुख्य हैं। इनका पहला उपन्यास सेई नाडी निरावधि 1963 में प्रकाशित हुआ था। निरुपमा बोरगोहाइन के नारीवादी उपन्यास दिनोर पिसोट दिनोर, अन्य जीवन और चंपावती को दमनकारी सामाजिक रीति रिवाजों और पितृ सत्ता का सामना करने वाली महिलाओं के सहानुभूतिपूर्ण चित्रण के लिए भी जाना जाता है। उपन्यास इपारोर घोर सिपारोर घोर, जो कि 1979 में प्रकाशित हुआ, एक बेहतर जीवन की तलाश में ग्रामीण लोगों के शहरी क्षेत्रों में उनके संघर्ष को इसमें दर्शाया गया है। इनका अभिजात्री जो उपन्यास था 1995 में जो प्रकाशित हुआ, एक असमिया स्वतंत्रता सेनानी, नारीवादी और सामाजिक कार्यकर्ता चंद्र प्रभा सैकियानी के जीवन पर आधारित था और इसने इन्हें 1996 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिलाया और ये इनके बेहतरीन उपन्यासों में से एक माना जाता है।
ट्रिब्यूट्स टू हेलन हेज, अमेरिकन स्टेज एंड स्क्रीन एक्ट्रेस हु अर्न मैसिव रिकग्निशन फॉर हर पोर्ट्रेयल ऑफ क्वीन विक्टोरिया एंड अदर रीगल लेडीज इन स्टेज प्लेज। हेज वाज ऑफन रिगार्डेड एज द फर्स्ट लेडी ऑफ अमेरिकन थिएटर, शार्ड विद अवार्ड्स एंड साइटेशंस फॉर हर एक्टिंग एंड ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज। Hayes received the Presidential Medal of Freedom in 1986 and held the distinction of having 2 Broadway theaters named in her honor. Born in the year 1900, Hayes passed away this day at the age of 93. And friends, this day in 1919, we also remember Mr. Nat King Cole. Yes, friends, hailed as one of the best and most influential pianists and small group leaders of the swing era, Cole, whose popularity allowed him to become the first African-American to host a network variety program, the Nat King Cole Show, which debuted on NBC television in 1956. Nat King Cole attained his greatest commercial success as a vocalist, specializing in warm ballads steeped in light jazz. He passed away early at the age of 45 due to lung cancer. Here's this big hit of his, Smash Mona Lisa.
Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real? Mona Lisa. just a cold and lonely, lovely work of art.
Country legend Ferlin Husky left us this day in the year 2011 at the age of 85. Born and raised on a Missouri farm, Husky became infatuated with music, began to play guitar as a child. As a young man, worked as a radio performer, disc jockey, dance hall singer, before recording his first hit, A Dear John Letter, a duet with California singer John Shepherd in 1953. And of course, friends, one of his biggest hits was the gospel standard On the Wings of a Dove, released way back in 1960, a sampler of the same.
He sends his pure and sweet love, a sign from above, on the wings of a dove. When troubles surround us, when evils come, the body grows weak, the spirit grows numb. When these things beset us,
और आज के दिन जन्म हुआ सुलोचना चव्हाण, प्रसिद्ध लोक गायिका जो मराठी में अपनी लावणियों के लिए जानी जाती हैं। सुलोचना चव्हाण ने हिंदी फिल्मों और एल्बम गाने भी रिकॉर्ड किए। मार्च 2022 में सुलोचना चव्हाण को पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। कला शैली में उनके गायन योगदान के लिए उन्हें लावणी साम्राज्ञी यानी कि लावणी की रानी की उपाधि से भी सम्मानित किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष 2010 के लिए लता मंगेशकर पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया था। साल 2012 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। आइए सुनते हैं सुलोचना चव्हाण की गाई एक लावणी।
Friends, guitarist, songwriter, singer, founder, member of alternative rock band Smashing Pumpkins, Billy Corgan celebrates his birthday today. Billy and the Smashing Pumpkins have become one of the most recognized bands in the world, with legions of fans from every corner of the globe. They have sold more than 30 million records worldwide to date and have won over a dozen awards ranging from Music Giants MTV to world-respected Grammys to the Make-A-Wish Foundation. June 30 was even named Smashing Pumpkins Day in San Francisco, California. And besides the lead guitar, Billy also plays rhythm guitar, bass guitar, mellotron and the piano. He also produces, mixes, arranges some of the music. Happy birthday, Billy. And Hollywood actor Kurt Russell celebrates his birthday today. Russell began his acting career in Western series, of course, that's called The Travels of Jemmine McFeeters, when he was only 12 years old. Russell has a stacked filmography and has played a lot of iconic characters, including Elvis Presley. And also, Vishal, today is the birthday of Indian badminton star Saina Nehwal, who falls under the list of top women badminton players.
और लंदन ओलंपिक 2012 में साइना नेहवाल ने इतिहास रचते हुए बैडमिंटन की महिला एकल स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया था। बैडमिंटन में ऐसा करने वाली साइना नेहवाल भारत की पहली खिलाड़ी रही हैं और 28 मार्च 2015 को इन्होंने दुनिया की नंबर वन रैंकिंग भी हासिल की थी। इनके मिलने वाले सम्मान की बात करें तो अर्जुन पुरस्कार से वर्ष 2009 में इनको सम्मानित किया गया था। और अब
टाइम फॉर अस टू
लीव सुभद्रा, समय हो रहा है कि हमें श्रोताओं से यहीं विदा लेनी होगी। तो आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और आपका दिन अच्छा गुजरे, इसी कामना के साथ अब इजाजत दीजिए विशाल और सुभद्रा को कार्यक्रम आज सवेरे यहीं संपन्न करने की।
थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, नमस्कार।